आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने केरलम और तमिलनाडु में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। उन्होंने तवानाई के शोबे में दीगर ममालिक पर इन्हिसार को कम करने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम को उजागर किया। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाए जाने से मुतालिक अपोजिशन के करारदाद को सोटी वोट से नामंजूर कर दिया। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क के खाम तेल की सप्लाई महफूज है और उसकी तकरीबन 70% खाम तेल की दरामदाद आबनाए हुरमुज के बाहर से आ रही हैं। मगरबी एशिया जंग में मजीद तेजी आ गई है। अमरीकी अफवाज ने ईरान के 16 जहाजों को तबाह कर दिया है और ईरान के बैलिस्टिक मिजाइल और ड्रोन तैयार करने वाले मराकज को भी निशाना बनाया गया है। नई दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2026 का आगाज हो गया है और हैदराबाद में एफआईएच खवातीन हॉकी आलमी कप क्वालिफायर के पूल बी के तहत भारत और वेल्स के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज केरलम और तमिलनाडु में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर आज़म ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पंजापुर में 5,650 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और उन्हें वक्फ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए बुनियादी ढांचे के फरोग के प्रोग्राम कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे और मकामी आबादी के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे, नीज मकामी मईशत बेहतर होगी।
टुडे प्रोग्राम इज एन इम्पोर्टेंट वन फॉर द फ्यूचर ऑफ तमिलनाडु। इट इज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट वर्थ 5,600 करोड़ रुपीज। दिस प्रोजेक्ट आर अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्लीन एनर्जी, पेट्रोलियम रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, हाईवे, रेलवे एंड रूरल रोड। दे विल बूस्ट एनर्जी एक्सेस कनेक्टिविटी एंड क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ जॉब फॉर द यूथ ऑफ तमिलनाडु।
वज़ीर आज़म ने दो अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों, दो आम एक्सप्रेस रेलगाड़ियों और एक मुसाफिर रेलगाड़ी समेत 5 नई ट्रेन खिदमात को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने नीलग्रीस और इरोड अजला में 3,680 करोड़ रुपए से ज्यादा की तखमीना सरमायाकारी के साथ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के शहर में गैस तकसीम करने के नेटवर्क का संग बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट को भी वक्फ किया। प्रोग्राम के दौरान खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रही है। तमिलनाडु के नीलग्रीस और इरोडे अजला में पाइप्ड कुदरती गैस कनेक्शन प्रोजेक्ट माहौल के लिए साजगार सूरत हाल पैदा करेगा, जो 8 बरस में 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।
इस नेटवर्क कवर्स नीलगिरी एंड इरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इट विल प्रोवाइड पाइप नेचुरल गैस टू नियरली 9 लाख फैमिलीज एंड हंड्रेड ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। पाइप गैस विल फ्लो डायरेक्टली टू होम, बूस्टिंग ईज ऑफ लिविंग। थाउजेंड्स ऑफ जॉब विल बी क्रिएटेड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली।
बाद में जनाब मोदी ने एनडीए की जानिब से मुनाकिदा एक अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोग रियासत की हुकूमत में तब्दीली चाहते हैं और एक ही कुनबे के इख्तदार को खत्म करना चाहते हैं। इससे कबल दिन में वज़ीर आज़म ने केरलम में अरनाकुलम में तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। उन्होंने आज सुबह कोची में अखिल केरला धीवारा सभा की गोल्डन जुबली तकरीबा से भी खिताब किया। इस मौके पर जनाब मोदी ने मुल्क में माहीगिरी से वाबस्ता बिरादरी की फलाह बहबूद के एनडीए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने कोची में एनडीए के प्रोग्राम में भी शिरकत की, जिसका मौजू था मोदी के साथ विकसित केरलम। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि तवानाई के मौजूदा आलमी बुहरान में आत्मनिर्भर बनने की अहमियत को एक बार फिर साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि तवानाई के शोबे में दीगर ममालिक पर इन्हिसार को कम करने के लिए हालिया बरसों में हुकूमत ने कई इकदाम किए हैं।
गल्फ में चल रहे युद्ध में हमें आत्मनिर्भरता का महत्व भी फिर से समझाया है। एनर्जी सेक्टर में हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम से कम हो, इसके लिए बीते सालों से लगातार कदम उठाए गए। भारत ने अपनी सोलर पावर कैपेसिटी बढ़ाई है। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम हो, इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसों और अन्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बल दिया जा रहा है। रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है।
लोकसभा ने सौती वोट के जरिए स्पीकर ओम बिरला को हटाए जाने के करारदाद को नामंजूर कर दिया। ऐवान में इस मामले पर बहस के दौरान जवाब देते हुए बीजेपी के लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अफसोसनाक है कि अपोजिशन ने लोकसभा के स्पीकर की मोतबरियत पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ऐसा तकरीबन 4 दहाइयों के बाद हो रहा है कि लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की बात की गई और यह सियासत और ऐवान दोनों के लिए अफसोसनाक वाकया है।
संविधान ने स्पीकर के पद को एक प्रकार से मध्यस्थी की भूमिका में रखा है। आपने मध्यस्थता करने वालों पर ही शंका के सवाल उठा दिए। 75 साल से हमारे ये दोनों सदनों ने हमारे लोकतंत्र की नींव को पाताल से गहरा पहुंचाया है और वो नींव जो पाताल से गहरी पहुंची है इसकी साख पर विपक्ष ने आज एक प्रकार से सवालिया निशान।
शोरगुल के दरमियान वजीर दाखिला ने कहा कि एनडीए हुकूमत ने कभी भी अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 1975 में इमरजेंसी के दौरान जब पूरी अपोजिशन को जेल में डाल दिया गया था उस वक्त अपोजिशन की आवाज को दबाया गया था। इससे पहले बहस में हिस्सा लेते हुए बीजेपी के लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अपोजिशन इस करारदाद को अपोजिशन पार्टियों के कुछ लीडरों की अना की तस्कीन के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में अपोजिशन के लीडर और कांग्रेस के पार्लियामानी रुकन राहुल गांधी को बैरून ममालिक में इजहार ख्याल करते हुए अपने अल्फाज पर ध्यान देना चाहिए। ऐवान में जनाब प्रसाद को जवाब देते हुए जनाब राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि उन्हें मुतअद्दिद मरतबा ऐवान में बोलने से रोका गया है। उन्होंने कहा कि ऐवान का ताल्लुक किसी एक पार्टी से नहीं है बल्कि वो पूरे मुल्क का ऐवान है। समाजवादी पार्टी के आनंद भदूरिया ने कहा कि अपोजिशन पार्टियां लोकसभा की चेयर के वकार के तहफ्फुज़ के लिए इस करारदाद को लाई हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाए जाने से मुतालिक करारदाद को मुस्तरद किए जाने के बाद ऐवान को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया और कल दिन में 11 बजे ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी। ये आकाशवाणी है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा है कि भारत की खाम तेल की सप्लाई महफूज है और भारत के खाम तेल की दरामदात का तकरीबन 70% अब आबनाए हुरमुस के बाहर से किया जा रहा है। मगरबी एशिया में हालिया वाकयात पर आज नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क आज 40 ममालिक और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से खाम तेल की दरामदात कर रहा है जिससे मुख्तलिफ वसाइल के जरिए खाम तेल के जहाजों से फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि मुल्क की गैस कंपनियां नए वसाइल से एलएनजी कार्गोस की खरीदारी कर रही हैं।
भारत सरकार ने रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस को एलपीजी उत्पादन को मैक्सिमाइज करने का आदेश दिया। इन सभी प्रयासों की वजह से हमारा डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड बाय 25%।
मगरबी एशिया में जारी जंग का आज 12वां दिन है। हालिया घंटों में खासतौर पर आबनाए हुरमुस में बहरी सलामती के हवाले से अब तक के कुछ संगीन तरीन नौयत के वाकयात देखे गए। अमरीका के महकमा दिफा पेंटागन का कहना है कि अमरीकी अफवाज ने ईरान के कई जहाजों को तबाह कर दिया जिनके बारे में शुबा था कि वो बहरी सुरंगें बिछाने का काम कर रहे थे। ऐसी इतलात मिलने के बाद कि तेहरान कुछ ऐसे धमाका खेज आलात नस्ब कर रहा है जो दुनिया के अहम तरीन तेल बर्दारी से मुतालिक समुद्री रास्तों में से एक को बंद कर सकते हैं। यह कार्रवाई की गई इस तनाजुर में यह कार्रवाई की गई। फौजी कार्रवाइयां भी शिद्दत अख्तियार कर गई हैं। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेक्सेथ ने कहा कि हालिया फौजी कार्रवाइयां इस खित्ते में जंग के आगाज के बाद से सबसे ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर सकती हैं। इत्तलात के मुताबिक हमलों में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के बुनियादी ढांचे और ड्रोन बनाने के मराकज को निशाना बनाया गया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
सिपाही पासदारा ने इनकलाब इस्लामी की जानिब से आज नई वार्निंग जारी करने के बाद खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया। IRGC ने एक बयान में ये बात कही है कि अमरीका इसराइल और उनके किसी साथी मुल्क के आबनाए हुरमुस से गुजरने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी फौजी कमांडरों ने यह बात भी दोहराई है कि जब तक ईरानी शहरों पर बमबारी जारी रहती है उस वक्त तक खित्ते से 1 लीटर तेल भी जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सऊदी अरब और UAE ने आज सुबह रियाज के शहजादा सुल्तान फिजाई अड्डे पर 6 बैलिस्टिक मिजाइल के हमले समेत बड़ी तादाद में मिजाइलों को फिजा में ही नाकारा कर दिया। कतर और कुवैत ने भी रिहायशी और तवानाई से मुतालिक बुनियादी ढांचे पर बराह रास्त हमलों को नाकाम बनाने की खबर दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت میں خصوصی سیکرٹری راجیش کمار سنہا نے کہا کہ اس وقت 28 بھارتی پرچم بردار جہاز، جن میں 778 بھارتی بحری جہاز خلیج فارس میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ان جہازوں اور ان کے عملے کے تحفظ اور سلامتی کے لیے فعال طور پر نگرانی کر رہی ہے۔ امور خارجہ کی وزارت کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ حکومت جی سی سی اور مغربی ایشیائی ممالک میں رہنے والے بھارتی شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سبھی بھارتی مشن بھارتی کمیونٹی کے ممبران کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ جناب جیسوال نے یہ بھی بتایا کہ ایک مرچنٹ جہاز جس پر حملہ کیا گیا تھا، اس پر سوار دو بھارتی شہریوں کی موت ہو گئی ہے اور ایک شخص لاپتہ ہے۔ بھارت پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ بی پی سی ایل نے شہریوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ حکومت بلا رکاوٹ ایل پی جی درآمدات کو یقینی بنانے کے خاطر ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر بی پی سی ایل نے کہا کہ موجودہ جغرافیائی و سیاسی صورتحال اور رکاوٹ کے سبب ایل پی جی درآمدات کے متاثر ہونے کی وجہ سے دستیاب سپلائی کو احتیاط سے استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کی دستیابی بنائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایل پی جی سلنڈر دیتے وقت گھریلو کنبوں کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔ بھارت میں امریکی سفیر سرگیو گور نے دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے بھارت کے رول کی ستائش کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گور نے کہا کہ امریکہ روس سے تیل خریدنے کو بھارت کی کوشش کے حصے کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت تیل کا سب سے بڑا صارف اور ریفائنر ہے۔ جناب گور نے کہا کہ مارکیٹ میں استحکام برقرار رکھنے اور دونوں ملکوں کے شہریوں کے مفاد کے لیے بھارت اور امریکہ کو ایک ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ آئی ڈی ایف سی فرسٹ بینک کی چنڈی گڑھ شاخ میں دھوکہ دہی کے ایک بڑے معاملے کے تعلق سے چنڈی گڑھ، گڑگاؤں اور موہالی میں 19 مقامات پر تلاشی کارروائیاں کر رہی ہے۔ ایجنسی کے مطابق یہ تلاشی کارروائیاں اس لیے کی گئی ہیں تاکہ تقریباً 590 کروڑ روپے مبینہ خورد برد کے پیسے کے وسیلے کا پتہ لگایا جا سکے، جو ہریانہ حکومت کے بینک کھاتوں سے لیا گیا تھا اور اس بینک کے کھاتوں میں رکھا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق ہریانہ حکومت کی مختلف سرکاری ایجنسیوں نے یہ رقوم فکس ڈپازٹ کے لیے بینک میں جمع کرائی تھیں، تاہم فکس ڈپازٹ میں رکھنے کے بجائے اس رقم کو مبینہ طور پر ذاتی استعمال میں لیا گیا۔ چھتیس گڑھ میں آج 44 خواتین کاڈر سمیت 108 مئو نوازوں نے خود سپردگی کی۔ مئو نوازوں نے بستر ڈویژن کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر جگدل پور میں پولیس کے اعلی افسران کے سامنے خود سپردگی کی۔ مئو نوازوں کی اس کاڈر پر مجموعی طور پر 3,29,00,000 کا انعام تھا۔ یہ مئو نواز بستر ڈویژن کے مختلف ضلعوں میں سرگرم تھے۔ عالمی پیرا ایتھلیٹکس گراں پری 2026 آج سے نئی دلی میں شروع ہو گیا ہے اور یہ اس ماہ کی 13 تاریخ تک جاری رہے گا۔ بھارت کے ٹاپ پیرا ایتھلیٹکس، جن میں 2024 میں پیرس میں سونے کا تمغہ جیتنے والے سمیت انتل، پروین کمار اور مریپن تھنگلیویو کے اس مقابلے میں حصہ لینے کی امید ہے۔ 3 روزہ اس مقابلے میں مختلف زمروں میں کھلاڑیوں کے لیے 74 عالمی درجہ بندی سلاٹس فراہم کیے جائیں گے۔ 9 ممالک کے ایتھلیٹس اس مقابلے میں حصہ لیں گے۔ بھارت کی جانب سے تقریباً 219 ایتھلیٹس پر مشتمل سب سے بڑا دستہ اس مقابلے کے مختلف کھیلوں میں حصہ لے رہا ہے۔ حیدرآباد میں ایف آئی ایچ خواتین ہاکی عالمی کپ کوالیفائر کے پول بی کے تحت بھارت نے ویلز کو 1-4 سے ہرا دیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مغربی ایشیا جنگ اور اس سے متعلق سفارتی کوششوں کے سلسلے میں روس کے اپنے ہم منصب سرگئی لاوروف کو آج بھارت کے نظریات سے واقف کرایا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ان کے جناب لاوروف سے ٹیلی فون پر مفید بات چیت ہوئی۔ دونوں وزراء نے بھارت روس دو طرفہ اشتراک کے ایجنڈے کا جائزہ بھی لیا۔ اس سے قبل ڈاکٹر جے شنکر نے یورپی کمیشن کے نائب صدر کیجا کیلاس سے مغربی ایشیا جنگ اور اس کے مضمرات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے فرانس کے وزیر خارجہ جین نوئل بیروٹ سے بھی بات کی اور مغربی ایشیا جنگ پر نظریات کے تبادلے کی ستائش کی۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کیرلم اور تمل ناڈو میں 16,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے توانائی کے شعبے میں دیگر ممالک پر انحصار کو کم کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو اجاگر کیا۔ لوک سبھا میں اسپیکر اوم برلا کو ہٹائے جانے سے متعلق اپوزیشن کے قرارداد کو 100 ووٹ سے نامنظور کر دیا گیا۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک کی خام تیل کی سپلائی محفوظ ہے اور اس کی تقریباً 70% خام تیل کی درآمدات آبنائے ہرمز کے باہر سے آ رہی ہیں۔ مغربی ایشیا جنگ میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ امریکی افواج نے ایران کے 16 جہازوں کو تباہ کر دیا ہے اور ایران کے بیلسٹک میزائل اور ڈرون تیار کرنے والے مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور نئی دلی میں ورلڈ پیرا ایتھلیٹکس گراں پری 2026 کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔